खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। नाहूम की किताब के मुताबिक जब वो खुदा का बंदा खुदा के कलाम की रोया खुदा के कलाम को सुनता है तो वो खुदावंद की ज़ात के बारे में, उसकी कुदरत के बारे में, उसकी अजीम हस्ती के बारे में बयान करता है। नाहूम की किताब आपको पुराने अहदनामा में मिलेगी, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। हमारा मेन जो हवाला होगा वो इफ़सियों के ख़त में होगा, लेकिन यहाँ पर आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत खूबसूरत सच्चाइयाँ पढ़ने का मौका मिला। मीका की किताब के बाद आपको नाहूम की किताब मिलेगी। वहाँ पर खुदा का बंदा कहता है कि खुदा कहर करने में धीमा और कुदरत में बड़ा है, और वो मुर्जमों को, उन मुर्जमों को जो शरीर कहलाते हैं, जो सज़ा के लायक हैं, उनसे बदला लेता है। और वो आगे चलकर और बयान करता है कि खुदावंद की ज़ात ही है जो समंदर को, पानी को, हर एक चीज़ को डांटती है। हम पदायशी की किताब से जानते हैं कि खुदा ने किया क्या है कि पानी की हद मुकरर की, पानी को उसने एक जगह पर इकट्ठा किया और खुश्की को और पानी को अलहदा किया। सो खुदा कुदरत वाला खुदा है। और सातवीं आयत जब आप इसे पढ़ेंगे आपको बहुत ही सच्चाइयां सीखने की मिलेंगी, लेकिन सातवीं आयत में लिखा है खुदावंद भला है, खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनागा है, और मुसीबत के दिन पनागा है। आज हम किसी ना किसी मुसीबत, किसी ना किसी दुख, किसी ना किसी खौफ, फिक्र, परेशानी, बोझ के नीचे हैं, और ये इसलिए नहीं कि हम अनोखे लोग हैं, इसलिए नहीं कि हम मसीही हैं। आज पूरी दुनिया जितने जानवर, रोमियो 8:12 के मुताबिक तमाम मखलूक में हर जानवर, हर परिंद, हर चिरिंद, रेंगने वाले हर एक खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्या करते हैं, मुश्ताक हैं कि वो आए और इस गुनाह की जो क्या कहते हैं कि तरीकी है से दूर करें। सो खुदावंद का बंदा नाहूम कहता है कि खुदावंद भला है, सच्चा है, दुरुस्त है, अच्छा है, भलाई करता है और मुसीबत के दिन पना गाह है, वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है, वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। इस एक आयत में बहुत कुछ है कि वो आपको जानता है। हम सब खुदावंद यीशु मसीह पर तवक्कल करते हैं ना जी। तवक्कल एक दूसरा लफ्ज है जिसका कहते हैं मतलब ईमान रखना। हम सब यीशु पर ईमान रखते हैं। सो जो यीशु पर ईमान रखते हैं खुदा उनको जानता है। खुदा आप सबको शख्सी तौर पर जानता है, वो आपको भूला हुआ नहीं है। जैसे पुराने अहदनामा में एक वक्त था जब बनी इसराइल कौम के हालात कुछ ऐसे थे कि वो सोच रहे थे कि खुदा उनको भूल गया, वो सोच रहे थे कि खुदा ने उनको नज़रअंदाज कर दिया, वो सोच रहे थे कि खुदा उनकी तरफ से अपना मुंह फेर चुका है। तो खुदावन ने कुछ इस तरह कहा यर्मिया नबी के सहीफा में कि माँ अपने बेटे को भूल सकती है, हालांकि माँ नहीं भूलती, लेकिन खुदावन अपने लबों से कहता है कि माँ अपने बेटे को भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। और फिर खुदावन यहां कहता है अपने यसाया नबी के सहीफा में 40वें बाप में गालबन, वहां पर खुदा कहता है कि मैं हर एक सितारे को, हर एक उस सयारे को जो इस कायनात में है, नाम बना नाम जानता हूं। हर एक सितारे को, हर एक सितारा जो आसमान पर चमकता है, खुदावंद खुदा है जो उसका हिसाब रखता है और नाम बनाम उनको जानता है। अगर हम साइंस की किताब पढ़ें तो हम कुछ सितारों को जानेंगे, 10 या 20 या 30, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक करोड़ों अरबों 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 खरबों सितारे हैं जिनका खुदा हिसाब रखता है। तो यहां पर नाहूम कहता है कि खुदावंद भला है और मुसीबत में क्या है, पनागा है, और जो जो उस पर तवक्कल यीशु पर खुदावंद पर यकीन करते हैं उनको वो जानता है। क्या लिखा है, वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। ये बहुत अजीम बात है कि खुदा आपको जानता है, खुदा मुझे जानता है, वो आपका मेरा नाम जानता है। जब उसने आपको और मुझे ये जिंदगी बख्शी, जबूर 139 के मुताबिक खुदावंद का बंदा दाऊद यूं कहता है कि तूने वो सब अयाम यानी कि हर एक दिन, हर एक लम्हा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड अपनी किताब में लिखा, हालांकि अभी तक वो वजूद में ना आए थे। यहां से शुरू करने का मकसद यही है कि आप जाने कि आपका खुदा कितना कुदरत वाला है, कितना मोहब्बत करने वाला है, कितना प्यारा है, कितना भला है, वो आपको नहीं भूलता। हमारी तो उम्र के लिहाज से सोच या हमारे सोचने की कुव्वत या याद रखने की ये कुव्वत जैसे शक्ति या ताकत कहते हैं जाती रहती है। खुदावंद आज कल बल्कि अब तक यकसा है, वो नहीं बदलता। इसलिए आए मेरे साथ निकालें इफ़सियों चार बाप जहां से हम सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको निजात रहाई इसलिए बख्शी है कि हम उस निजात और रहाई का दूसरों को प्रचार कर सकें। हमने पिछले दिनों में कल के दिन में देखा कि चार अनाजील हैं। कितनी अनाजील हैं? चार। मत्ती की इंजील जो खासल खास यहूदियों को बयान करती है कि यीशु मसीह क्या है, बादशाह है, जो उनको रहाई दे सकता है, जो वो उनके तमाम दुखों से रहाई देकर हुक्मरानी करेगा। मरकस की इंजील यीशु मसीह को बयान करती है, मरकस इस तरह बयान करता है कि वो क्या है, खुदा का खादम है, खुदा का खादम है। खासकर रूमियों के लिए लिखी गई है कि रूमी गैर अकवाम उससे जाने कि किस तरह खुदा अपने बेटे को भेजकर खिदमत का काम लेता है। और जब हम लूका की इंजील को देखते हैं तो लूका की इंजील जो यूनानी था, लूका यूनानी था, बादशाह के हाथ से भेजे हुए उस इख्तियार के बायस वो आया उस मौजज़े के बारे में कि किस तरह कोई कब्वारी से पैदा हो सकता है, ये अजीब काम क्या है। यूनानियों की हिकमत, जितना भी ये मेडिकल का काम है, जितने भी डॉक्टर वगैरह हैं, सब यूनानी हिकमत से आते हैं। सो यूनानी इस बात पर मुत्तफिक नहीं थे कि यीशु मसीह कब्वारी से पैदा हुआ, क्योंकि ये इंसानी निज़ाम के मुतबादल है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन खुदावंद खुदा क्या कहता है, जो इंसान से नामुमकिन है वो खुदा से मुमकिन है। सो लूका के इंजील में खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने आदम या क्या कहते हैं कि खुदावंद का चुना हुआ बयान किया गया है। और यूहन्ना की इंजील खुदावंद यीशु मसीह को जिस्म में खुदा जाहर करती है, खुदा का बेटा जाहर करती है। सो चारों लोगों का, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, उनका यही मकसद है कि सुनने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले, जिन तक ये पैगाम पहुंचे, इस अंजील से, इस खुशखबरी से वाकिफ हो। अंजील का मतलब है खुशखबरी। अंजील का मतलब क्या है? खुशखबरी। सो हम सीख रहे हैं कि चार अनाजील लिखी गई, आप और मैं पांचवीं अंजील है चलती फिरती, ऐसी अंजील जो बोलती है, जो वर्कों पर नहीं लिखी गई बल्कि हमारे दिलों पर लिखी गई है। हम वो पांचवीं अंजील हैं यीशु मसीह की, जो बोलती है, चलती है, फिरती है, सुनती है। और बहुत दफा कल मैंने इस बात पर ख़त्म किया था کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنے لفظوں کو استعمال کریں ورنہ ہم خوشخبری کا پیغام دیں. یہ کس طرح ہوگا؟ اس سے میرا کیا مطلب ہے؟ ہماری زندگی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. ہم یسوع مسیح کی چلتی پھرتی کھلی انجیل ہیں. آئیں ہم دیکھیں کہ کس طرح ہوگا, کس طرح ہم دوسروں کے لیے خوشخبری کی انجیل خوشخبری بن سکتے ہیں. افسیوں 4 اس کی 31 آیت سے خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے, ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ, شور و گل اور بدگوہی, ہر قسم کی بدخواہی میں تم سے دور کی جائے. اور 32 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو, اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. جب ہم مہربان ہوں گے, جب ہم نرم دل ہوں گے, جب ہم معافی کا درس سیکھ کر دوسروں کو معاف کریں گے, تو یہ 3 ہیں جو مسیح کو ظاہر کر سکتی ہیں. جس زمانے میں, جس دور میں ہم رہتے ہیں, مہربانی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مطلب کی ہے. غیر اقوام ہے کتنی مہربانی کرتے ہیں اپنے مطلب کو. ہم بہت دفعہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں عدلے کا بدلہ. مہربان ہونے کا یہ دوسرا لفظ ہے کہ خدا کے فضل جیسا رویہ رکھنا. سو جب ہم ایسا رویہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ مسیح کی منادی ہوگی بغیر لفظ استعمال کیے کرتے. ہم یسوع مسیح کی خوشخبری ہیں. کس طرح؟ کیونکہ اس نے ہمیں خوشخبری دی ہے. غلام جب آزاد ہوتا ہے تو وہ آزادی کا ہی ڈھول بجاتا ہے. وہ غلامی کے بارے میں اگر بتائے گا تو کہے گا کہ غلامی کتنی بری ہے. زندہ لوگ زندہ خدا کی کیا کرتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں. مردہ نہ بول سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ پھل سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے. اس لیے اس کا حل کیا ہے کہ کس طرح ہم بن سکتے ہیں یسوع مسیح کی خوشخبری دوسروں کے لیے؟ جیسے پاسٹر سعید جو اران میں قید خانہ میں ہے, اور پچھلے ہی دنوں میں ایک نئی رپورٹ ملی ہے کہ پہلے اسے ایک عام جیل میں رکھا گیا تھا جہاں پر عام قیدی ہوتے تھے, لیکن حال ہی میں اسے خطرناک اران کی خطرناک جیل میں اسے بھیج دیا گیا تاکہ وہاں پر وہ مر جائے, تاکہ وہاں پر کوئی نہ کوئی قیدی اسے ہلاک کر دے. اس پاسبان کے باعث 30 قیدی اران کی جیل میں یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں, اور اس کے اپنے کال کے مطابق, پاسٹر سعید کے خطوں کے مطابق, اس کی بیوی کے انٹرویو کے مطابق, وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا بھلا خدا ہے, اور وہ مصیبت میں ان کی پناہ گاہ ہے, اور وہ اس پر توکل کرتے ہیں. اس لیے خدا ان کو بھولا نہیں بلکہ ان کو جانتا ہے. خدا آپ سب کو جانتا ہے. آج آپ کے دل میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو بوجھ, جو فکر, جو پریشانی, جو بیماری, اولاد کی, کاروبار کی, حالات کی, ہو سکتا ہے بدروحوں یا شیطانی قوتوں کا بوجھ, وہ ہم سب سے واقف ہیں. وہ ہم سب سے واقف ہے, وہ ہمیں بھولا نہیں. اس لیے حوصلہ امید نہ چھوڑے, جیسے پاسٹر سعید نے چھوڑا نہیں. 30 قیدیوں نے, اران میں 30 قیدیوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اپنا شخصی نجات دہندہ. اور پھر مصر اور دوسرے علاقوں میں, وہاں پر لاکھوں کے حساب سے کرشنوں کو مارا گیا ہے, لیکن لاکھوں کے حساب سے یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں. خدا ان کو نہیں بھولا, آپ کو نہیں بھولا, مجھے نہیں بھولا. اس لیے پالوس کہتا ہے کہ 5 خوشخبری کس طرح کی نظر آتی ہے. پس 5 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے, پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانت بنو. کس کی مانت بنو؟ خدا کی مانت بنو. और मोहब्बत से चलो, और मोहब्बत से चलो। मोहब्बत से चलने से क्या मुराद है? मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो। जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। जैसे मसीह ने खुशबू की मानद खुदा को खुश करने के लिए कुर्बान कर दिया, वैसे चलें। इस आयत में बहुत कुछ है सीखने के लिए। यहूदी रिवाज के मुताबिक जब कोई भी सोखनी कुर्बानी गुजरानी जाती थी तो खुदा उस कुर्बानी की खुशबू से खुश होकर उनके गुनाह उनकी गलतियों को माफ़ करता था। यीशु मसीह की कुर्बानी ने भी कि उसकी कुर्बानी की खुशबू से हम सब के गुनाह माफ़ हुए हैं। क्या हम इस बात का यकीन कर सकते हैं कि हम सब के गुनाह खुदावंद यीशु मसीह ने माफ़ किए? इसलिए पालूस रसूल इसे यूं कहता है, पहला करंथियों पहला करंथियों में वो इस बात को बयान करता है खुशबू के साथ। हम इस हवाले को पढ़ेंगे, इस पर गौर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। हाँ जी, माज़र चाहता हूँ। दूसरा करंथियों उसका दो बाप, यीशु मसीह ने खुशबू की मानद अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, इस हवाले को पढ़ेंगे। ये खुद अपनी वजाहत करता है 14वीं आयत से। यहाँ पर तीतस और पालूस जो के इकट्ठे हैं उस खुशखबरी के बारे में बात हो रही है, सो हम 14वीं आयत से पढ़ेंगे वक्त की कमी के बायस। मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त करवाता है और अपने इलम की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम खुदा के नज़दीक निजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं। बाज के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू और बाज के वास्ते जीने के लिए ज़िंदगी की बू हैं। और कौन इन बातों के लायक है? क्योंकि हम उन बहुत लोगों की मानद नहीं जो खुदा के कलाम में अमेजिश करते हैं, बल्कि दिल की सफाई से खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। पालूस और तीतस यीशु मसीह की खुशखबरी थे। जहाँ से वो गुजरते थे मसीह की खुशबू, मसीह उनमें नज़र आता था। ऐसी पांचवी खुशखबरी नज़र आती है, पांचवी अंजील चलती फिरती। पालूस की ज़िंदगी ऐसी थी कि मसीह की खुशखबरी की खुशबू उसमें से आती थी। जैसे आज कभी कोई हम अतर लगाते हैं तो जहाँ से गुज़रते हैं अगर अतर तेज़ होगा तो लोगों के सर में दर्द होगा, अगर वो खुशबू अच्छी होगी तो लोग वाह बहुत अच्छी खुशबू है। हमारी ज़िंदगी भी खुशबू की मानद होनी चाहिए ताकि जहाँ से गुजरें मसीह की खुशखबरी, मसीह की ज़िंदगी हम में ज़ाहिर हो। आए हम दुआ करें।